नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के हर रूप से लड़ने के देश के दृढ़ संकल्प को दोहराया। इधर अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो स्थित ताजांग गांव के लोगों द्वारा इस पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले दिवंगत कॉर्पोरल तागे हालियांग की पहली पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंगकुमे जिला पुलिस द्वारा फरार कैदी और कुख्यात अपराधी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया। अभियान में सामान्य महिला किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिविल सेवकों के विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान। पश्चिम बंगाल में पहले चरण और तमिलनाडु के एक ही चरण में कल होने वाले विधानसभा चुनावों की सभी तैयारियां पूरी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2006 में मालेगांव विस्फोट मामले में 4 अपराधियों को बरी किया, उनके खिलाफ लगे आरोप भी खारिज किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आज ही के दिन आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। इनमें अधिकतर लोग पर्यटक थे। एक रिपोर्ट।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए लक्षित हमलों में पाकिस्तान और POJK में 9 आतंकवादी शिविरों को सटीक रूप से निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी, उनके प्रशिक्षक, संचालक और सहयोगी मारे गए। अधिकांश आतंकवादी जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। इस ऑपरेशन ने भूमि, वायु और समुद्र के माध्यम से उच्च सटीकता और समन्वित सैन्य कार्रवाई के जरिए भारत की उत्कृष्ट क्षमता को प्रदर्शित किया। आनंद कुमार के साथ।
जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के दोनों क्षेत्रों में विशेष रूप से नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त गश्त को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने अलग अलग संदेशों में कहा है कि निर्दोष नागरिकों के बलिदान को बुलाया नहीं जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं ने बैसरन पहलगाम के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। इस बीच दक्षिण कश्मीर में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता सोफी यूसुफ ने पहलगाम के शहीदों को याद करने के लिए पहलगाम में एक रैली का नेतृत्व किया, जिसमें शोकाकुल परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की गई और इस भीषण हमले में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। तारिक रातर, आकाशवाणी।
पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले साल 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर एक संदेश भी साझा किया है, जिसमें आतंकवादियों की कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया है कि जब मानवता की सीमाएं पार होती है तो जवाब निर्णायक होता है। इस जघन्य कृत्य पर देश को झकझोर कर दिया था और दुनिया भर की सरकारों तथा नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो स्थित ताजांग गांव के लोगों द्वारा इस हमले के में जान गंवाने वाले दिवंगत कॉर्पोरल तागे हालियांग की पहली पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉर्पोरल के पिता तागे तादे ने राखे स्मृति स्थल पर दिवंगत की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गांव के बुजुर्गों और स्थानीय निवासियों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंगकुमे जिला पुलिस द्वारा मंगलवार को फरार कैदी और कुख्यात अपराधी बिरजू भूमिज को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। इस सफल अभियान में सामान्य महिला किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोलोरियांग मुख्यालय में स्थित निकजा गांव में खेतों में काम कर रही महिला किसानों ने आरोपी को देखते ही तुरंत पुलिस को सूचित किया। समुदाय से मिली सूचना के आधार पर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी गमो जेनी के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवकों के विकसित भारत के निर्माण में लक्ष्य के साथ उन्हें हर प्रयास को समायोजित करने का आह्वान किया। देश के सिविल सेवकों को लिखे पत्र में श्री मोदी ने निरंतर सीखने और क्षमता निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को सराहा है। हाल ही में संपन्न कर्मयोगी साधना सप्ताह के सिविल सेवकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी पर बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि सीखने के इस सप्ताह भर के उत्सव में देश भर के सिविल सेवकों ने हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
अपने पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार सीखते रहने की लगन को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बताया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया ऐसे दौर में है जहां खुद को अपडेटेड रखना और नई कौशल सीखना विकल्प नहीं रह गया है। श्री मोदी ने कहा कि भविष्य में बदलाव की गति और तेज होगी और ऐसे वक्त में लगातार सीखते हुए ही आगे बढ़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी में बड़ी चुनौतियों के साथ साथ बड़े अवसर भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेंड्स लगातार बदल रहे हैं, नई नई तकनीकें आ रही हैं और लगातार नवाचार देखने को मिल रहा है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकार की सेवाएं और काम करने की संस्कृति इस ऐतिहासिक दौर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने सिविल सेवकों से आग्रह किया कि वे सीखने को जीवन भर की आदत बनाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में आई गॉट कर्मयोगी जैसे प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को महत्वपूर्ण बताया है। अक्षित वैद्यान के साथ अंकित कुमार।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज 2006 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में चार आरोपियों को बरी कर दिया है। न्यायालय ने उनके खिलाफ आरोप तय करने वाले विशेष न्यायालय के आदेश को भी रद्द कर दिया है। चारों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत हत्या और आपराधिक साजिश के साथ साथ कड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आरोप लगाए गए थे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण और तमिलनाडु में एक ही चरण में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। पश्चिम बंगाल में कल 16 जिलों के 152 सीटों पर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस चरण में 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं।
निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। मतदान 44,376 बूथों पर होगा, जिनमें 3,000 सहायक बूथ शामिल हैं। महिलाओं द्वारा 5,444 बूथ संचालित किए जाएंगे। मॉडल बूथों की संख्या 207 है। वहीं बालुरघाट और आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों में 2 दिव्यांगजन संचालित बूथ हैं। पहले चरण के चुनाव में 167 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी बूथों पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए आयोग ने त्वरित प्रतिक्रिया दल, हवाई दस्ते, CCTV कैमरे सहित विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाएं की हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।
तमिलनाडु की मुख्य चुनाव अधिकारी अर्चना पटनायक ने कहा है कि राज्य में कल होने वाले चुनाव की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। तैयारियों की समीक्षा के बाद आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्रीमती पटनायक ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने सुचारू मतदान के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। पृथ्वी दिवस के अवसर पर आज उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सभी से पृथ्वी की रक्षा और संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि पृथ्वी की रक्षा करना न केवल एक सामूहिक कर्तव्य है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति एक पवित्र प्रतिज्ञा भी है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में महानिदेशक धीरज एम काकड़िया ने नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अवसर पर शपथ दिलाई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला T20 क्रिकेट का तीसरा मैच आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। 5 मैच की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका 2-0 से आगे है। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और जर्मनी के बीच संबंध समय के साथ धीरे धीरे मजबूत हुए हैं। जर्मनी के बर्लिन में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा है कि दोनों देश न केवल राजनीतिक और रणनीतिक संबंध साझा करते हैं बल्कि कला और संस्कृति का भी बड़े उत्साह के साथ आदान प्रदान करते हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने ब्रिटेन के अधिकार यात्रा के दौरान ब्रिटेन के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल रिचर्ड नाइटन से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के वैश्विक व्यापार असंतुलन से लेकर उभरते साइबर खतरों तक की समकालीन चुनौतियों का मिलकर समाधान करने, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने और तीव्र तकनीकी परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए अपने साझा संकल्प की पुष्टि की। और उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर में पहली पारंपरिक पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।